ओम शांति। 16 दिसंबर 1985, अव्यक्त मूर्ति, बाप दादा की कुमारों से मुलाकात। कुमार, सदा अपने को मायाजीत कुमार समझते हो। माया से हार खाने वाले नहीं, लेकिन सदा माया को हार खिलाने वाले। ऐसे शक्तिशाली बहादुर होना। जो बहादुर होता है उससे माया भी स्वयं घबराती है। बहादुर के आगे माया कभी हिम्मत नहीं रख सकती। जब किसी भी प्रकार की कमजोरी देखती है तब माया आती है। बहादुर अर्थात सदा माया जीत। माया आ नहीं सकती, ऐसे चैलेंज करने वाले होना। सभी स्वयं को सेवा के निमित्त अर्थात सदा विश्व कल्याणकारी समझ आगे बढ़ने वाले हो। विश्व कल्याणकारी बेहद में रहते, हद में नहीं आते। हद में आना अर्थात सच्चे सेवाधारी नहीं, बेहद में रहना अर्थात जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप को फॉलो करने वाले श्रेष्ठ कुमार है। सदा इसी स्मृति में रहो। जैसे बाप संपन्न है, बेहद का है, ऐसे बाप समान संपन्न सर्व खजानों से भरपूर आत्मा हूं। इस स्मृति से व्यर्थ समाप्त हो जाएगा, समर्थ बन जाएंगे। 16 दिसंबर 1985, बाबा कह रहे हैं, कुमार सदा अपने को क्या समझते हो? माया जीत समझते हो। माया से हार खाने वाले नहीं, लेकिन माया को हार खिलाने वाले। ऐसे शक्तिशाली बहादुर, शक्तिशाली और बहादुर साहसी होना। जो बहादुर होता है उससे माया भी स्वयं घबराती है। बहादुर के आगे माया हिम्मत नहीं रख सकती। जब किसी भी प्रकार की कमजोरी देखती है तब माया आती है। बहादुर अर्थात सदा माया जीत। माया आ नहीं सकती, ऐसे चैलेंज करने वाले होना। तो बाबा माया जीत बनने के लिए कह रहे हैं, शक्तिशाली बनने के लिए कह रहे हैं, बहादुर बनने के लिए कह रहे हैं, हिम्मतवान बनने के लिए कह रहे हैं। कुमार सदा अपने आप को माया जीत समझते हो। माया से हार खाने वाले नहीं, परंतु माया को हार खिलाने वाले। आज की मुरली में बाबा ने 3 विधि बताई है माया जीत बनने की। आज का वरदान ये अलौकिक जीवन है, इस अलौकिक युग है। और परिस्थितियां क्या है, माया के विघ्न सब क्या है, अलौकिक खिलौने हैं ये सारे। तो अलौकिक जीवन, 3 शब्दों का प्रयोग किया है, अलौकिक जीवन, उसमें अलौकिक युग और ये जो परिस्थितियां या माया के विघ्न है, इनको क्या समझना है, खिलौने समझना है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ये पहली विधि है। जो कुछ भी परिस्थिति आ रही है, जो भी माया आ रही है, जैसे खिलौने मात्र है। खिलौने से कभी घबराते नहीं है, डरते नहीं है कोई भी खिलौने से, चाहे कितना भी उनका विकराल रूप हो। परिस्थितियां जो भी है, सदा तो नहीं रहेगी ना, कि सदा रहने वाली आज की जो परिस्थिति है, कोई भी चीज सदा नहीं रहने वाली है। यदि माया का सामना अभी हो भी रहा है तो वो भी सदा नहीं रहने वाला है। इसके लिए इस स्मृति से स्वयं को अलग रखो। तो सबसे पहली विधि है ये अलौकिक युग, कहा बाबा ने, ये अलौकिक युग है और ये जीवन अलौकिक है। इसके लिए ऐसा हो नहीं सकता कि परिस्थितियां ना आए, परंतु आएगी, उन्हें क्या समझना है, खिलौना समझना है। डरना नहीं है उनसे। किसी राज्य में एक बहुत बड़ा सम्राट था, उस सम्राट ने एक दिन अपने वजीरों से कहा कि जाओ ऐसा एक सूत्र लेके आओ जो हर परिस्थिति में या किसी भी परिस्थिति में मेरे काम में आ सके, ऐसा कोई सूत्र लेकर आओ। सारे वजीर परेशान हुए, कहां से लाया ऐसी कोई बात जो हर परिस्थिति में काम आए, ऐसी एक कोई बात। वो जाते हैं किसी तपस्वी साधु फकीर के पास और उनको ये बात बताते हैं। तो फकीर कहता है ठीक है मैं देता हूँ। एक कागज पर कुछ वो लिखता है, उसको बंद करता है, एक अंगूठी में बंद कर उसे दे देता है वजीर को, और कहता है कि सम्राट से कहना इसे तभी खोलना जब कोई और मार्ग ना दिखाई दे, केवल तभी इसको खोलना, अन्यथा नहीं। वो वजीर उस सम्राट को वो अंगूठी दे देता है और कहता है कि ये वो अंगूठी है, पर शर्त एक है कि इसे तभी खोलना जब जीवन में और कोई मार्ग नहीं दिखाई दे, तभी अवश्य काम आएगी। तो वो तो सम्राट भी भूल जाता है ऐसे किसी सूत्र को। बहुत बार उसकी इच्छा होती है खोलने की, देखो उसमें आखिर है क्या इस अंगूठी में, परंतु क्योंकि वचन दिया था उसने इसके लिए नहीं खोलता है। कई साल बीत जाते हैं, 10 साल बीत जाते हैं, और एक दिन राज्य पर किसी दूसरे राजा का आक्रमण होता है, सब कुछ छिन जाता है, लूट जाता है, ये सम्राट पराजित हो जाता है। तब भी सोचता है कि अभी भी ऐसी परिस्थिति तो नहीं आई है कि इस अंगूठी को खोलूं, अब भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। परंतु फिर बाद में ऐसा समय आता है कि उसकी पूर्णतया हार हो जाती है, सारे सिपाही उसके मर जाते हैं, अकेला घोड़े पर बैठकर जाते रहता है, और पीछे सिपाही, बहुत बड़ी सेना, उसकी अपनी सेना खत्म हो जाती है, और भागते जाता है और भागते जाता है, और पीछे दुश्मन की सेना। भागते भागते भी सोचता है खोलू क्या, देख तो लू आखिर है, क्योंकि अब इससे बड़ा और क्या होने वाला है। फिर सोचता है नहीं, अभी भी मैं भाग सकता हूँ, अभी भी वो समय नहीं आया कि मैं इसको खोलू और देख लू इसमें क्या है। भागता है और भागता है और भागता है, और फिर नीचे खाई आ जाती है, सामने पीछे दुश्मन, सामने खाई। तो फिर सोचता है कि अब ये समय है, अब तो बचने का कोई मार्ग ही नहीं है, दोनों तरफ से फंस गया हूं। सोचता है इस अंगूठी को खोलू, अंगूठी को खोलता है, खोल कर देखता है उसमें छोटा सा एक कागज है और कुछ नहीं, और कागज पर एक वाक्य लिखा हुआ है। क्या हो सकता है वो वाक्य?
बदल
दिस टू विल पास, ये भी बीत जाएगा। क्या लिखा होता है? दिस टू विल पास, ये भी बदल जाएगा। और जैसे ही वो पढ़ता है उसका संपूर्ण जीवन उसके सामने आ जाता है। एक तरफ तो यहाँ दुश्मन पीछे थे, उनकी घोड़ों की टाप सुनाई दे रही थी, और फिर जैसे ये खोलता है उसका संपूर्ण जीवन उसके सामने आ जाता है, बचपन सामने आता है। बचपन नहीं रुका, बचपन भी गया, जवानी भी नहीं रुकी, जवानी भी गई, पति पत्नी गई, बच्चे गए, सब कुछ तो चला गया, कुछ भी नहीं रुका जीवन में। सुख आए थे, सुख भी चले गए, दुख आए, दुख भी चले गए, कुछ भी नहीं रुका। तो सोचते सोचते इतना मगन हो जाता है कि ये भी चला जाएगा, वो तो भूल ही जाता है कि सामने खाई है और पीछे दुश्मन। और जब होश में आता है तो देखता है वो किसी और राज्य की सीमा में प्रवेश कर चुका है, और पीछे देखता है तो सैनिक कहीं और दिशा में मुड़ चुके हैं। और फिर उसे एकदम से ख्याल आता है कि अभी संकट के जैसे बाहर हो गया हूं। कुछ समय के बाद फिर अपनी सेना तैयार करता है और फिर अपने राज्य को फिर से पा लेता है, सारी तैयारियों के साथ। उसकी पत्नी और वो सब जो बंदी थे फिर से छूट जाते हैं, फिर से वो सम्राट बनता है, और फिर उसकी शोभा यात्रा निकाली जाती है, और फिर चारों ओर उल्लास और चारों ओर जश्न मनाया जाता है। हाथी पर सवारी उसकी की होती है, और तब वो देखता है चारों ओर खुशियां ही खुशियां। फिर सोचता है फिर एक बार अंगूठी खोलू, फिर अंगूठी खोलता है और पढ़ता है ये भी बीत जाएगा, जैसे उस दुख से और उस भय से विरक्ति आ गई थी, वैसे अब इस सुख से, इस उत्सव से भी उसे विरक्ति आ जाती है। ये भी बीत जाएगा। अलौकिक जीवन में अलौकिक खेल है। इसमें हर परिस्थिति को क्या समझना है आज के वरदान से? खिलौना। मायाजित बनने की ये पहली विधि बाबा ने बताई। दूसरी विधि जिन्होंने मुरली सुनकर आए हैं, अपने सर्व संकल्पों सहित बाप पर बलिहार जाना। मायाजित बनने की दूसरी विधि क्या है? माया अर्थात विकारों से मुक्त होना। तो बाप के ऊपर समर्पित होना, समर्पण बहुत ऊंचा शब्द है। सरेंडर शब्द तो बहुत ही छोटा है और वो अंग्रेजी का शब्द है, उसके कई दूसरे भी अर्थ है। जब सरेंडर कहा जाता है तो विदेश में समझा जाता है किसी राज्य के सामने हार खाना, सरेंडर हो जाना, मतलब दुश्मन के सामने सरेंडर अर्थात झुक जाना, ये होता है उसका, वो एक अर्थ होता है। यहाँ ऐसा अर्थ नहीं है हार खाने वाला, यहाँ तो बहुत सूक्ष्म अर्थ है। हमारा कुछ है ही नहीं, हमारा कुछ भी नहीं है, जो भी है सब उसका दिया हुआ है, जो भी है सब उसकी कृपा दया अनुकंपा, उसकी इनायतें हैं। हमारा है क्या? हम किस बात पर गर्व करें? हमारा कुछ भी नहीं है, उसने दिया वही सब कुछ ले लेगा। इसके लिए जो कुछ भी हो रहा है उससे खुश रहना, राजी रहना, नो कंप्लेन्स। जो दिया है वो क्या कम दिया है? संसार की आत्माओं को देखो, उन्हें तो उतना भी नहीं मिल रहा है जितना हमें मिल रहा है। राजी तेरी रजा में मुझे ऐतराज क्या है? सूफी संत कहता है, राजी तेरी रजा में मुझे ऐतराज क्या है? तेरे पास इतनी सारी बिजलियां है, मेरे पास तो बड़े बड़े महल बनाए हैं मैंने, परंतु क्या इसकी कोई गारंटी है कि कब तेरी बिजली गिर जाए? यदि मैं अहंकार करूं तो कभी भी तेरी बिजली गिर सकती है और मेरे इस घर को नष्ट कर सकती है। राजी तेरी रजा में मुझे ऐतराज क्या है? तेरे पास बिजलियां है, मेरे पास आशियाना। सूफी गीत है, तेरे पास बिजलियां है, मेरे पास आशियाना। इसके लिए सब कुछ जैसा तू चाहे, हमारी इच्छा से कुछ नहीं हो रहा है। महाभारत का प्रसिद्ध उदाहरण जो यहां पर भी कभी सुनाया था, कुंती इतनी रोती है महाभारत के युद्ध के बाद, सब कुछ तो नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं बचा पांच पांडवों के अतिरिक्त, इधर भी नहीं बचे और उधर भी नहीं बचे। क्या फायदा हुआ इस युद्ध से? क्या इसीलिए युद्ध किया था? जो भी अपने थे, भीष्म चले गए, कृपाचार्य छोड़कर और अश्वत्थामा छोड़कर और पांच पांडव छोड़कर और सात्यकी छोड़कर, ये कुछ ही लोग बचे हैं, बाकी तो सब मर चुके हैं। क्या ये लक्ष्य था हमारे जीवन का? श्री कृष्ण उससे कहते हैं, उसको देखा नहीं जाता है उसका रोना, और वो कहती है कि तुम्हारे वजह से भी ये ऐसा लगता है कि तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब। वो इतना करुणा से भर जाता है और कहता है कि तुम अगर कहो तो अभी के अभी सबको जीवित कर देता हूं, तुम यदि कहो तो अभी सबको जीवित कर देता हूं। वो कहती है कि बस अब रहने दो, अगर तुम में इतनी शक्ति है कि तुम सबको जीवित कर देते हो तो तुम्हारी ही इच्छा से शायद ये हुआ है। फिर अगर तुम में इतनी शक्ति है कि तुम सबको मरे हुए को जिंदा कर सकने की बात कर रहे हो तो शायद ये फिर तुम्हारी ही इच्छा से हुआ है। इसके लिए राजी तेरी सजा में मुझे ऐतराज क्या है? जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए, होई सोई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे साखा। थाई विल शैल बी डन, तेरी इच्छा जो है, ये समर्पण भाव है यहां पर। यहां अपनी बुद्धि नहीं है, यहां तर्क नहीं है, लॉजिक नहीं है, रीजन नहीं है, तार्किक बुद्धि नहीं, यहां पर समर्पण भाव है। कोई भी तर्क नहीं है यहां पर, किसी भी तरह का रीजन नहीं है, संपूर्ण समर्पण। पर यह बहुत ऊंची अवस्था है जीवन की, बहुत ऊंची अवस्था। इसका वस्त्रों से, कहीं रहने से, किसी विशिष्ट प्रकार के बैच से कोई संबंध दूर दूर तक नहीं है। यह तो मन की अवस्था है, समर्पण स्थिति का नाम है, ना ही किसी उत्सव का, किसी सेलिब्रेशन का, किसी समारोह का। वैसा समर्पण भाव सर्व संकल्पों सहित बाप पर बलिहार जो जाते हैं, माया उन्हें उन पर वार नहीं कर सकती। मुरलिका, मुरली के वरदान से दूसरी विधि है मायाजीत बनने की। ऐसी श्रेष्ठ समर्पण, ऐसा श्रेष्ठ समर्पण भाव, ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, यहां हमको ठीक नहीं लगता, वहां हमको ठीक नहीं लगता, हमको ये नहीं हमको वो चाहिए, इच्छाएं कहां से आ गई वहां पर? सब उसकी इच्छा से, या स्वयं को छोड़ दो उसकी इच्छा पर। जहां पर भी वो रखे, उसी परिस्थिति में खुश रहना बहुत बहुत ऊंची अवस्था है, बहुत ऊंची स्थिति है। हमको लग रहा है यहां हमारी उन्नति नहीं हो सकती है, पर शायद संभवतः उसी से वो हमें आगे बढ़ाना चाहता है। क्या हमें सब कुछ पता है या उसे सब कुछ पता है? हमें तो लग रहा है ये हम करें तो अच्छा होगा, ये अगर हमको मिल जाए तो इससे हम आगे बढ़े, पर ऐसा हो ही ना शायद। वहां हमारा मार्ग ही अवरुद्ध हो रहा है आगे जाकर, और हम सोच रहे इसी मार्ग से हम जाए तो हम आगे बढ़ेंगे। उसने तो कुछ और ही सोच रखा है हमारे लिए। हम संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। किसी नदी में एक दिन दो तीन के गिर पड़े ऊपर से झाड़ से, और दोनों तिनके जो थे बहने लगे। पहला तिनका जो था वो नदी का प्रवाह बहुत ज्यादा था, परंतु सुखपूर्वक आनंद पूर्वक परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए बहने लगा। कोई संघर्ष नहीं कर रहा था, चुपचाप बहने लगा। सोचा कि बस यही मेरी नियति है और यही प्रभु की इच्छा है, और उसी के आधार से वो बह रहा। परंतु दूसरे तिनके को यह स्वीकार नहीं था, वो संघर्ष करने लगा। जहां नदी का जो प्रवाह था उसके विरोध में संघर्ष करने लगा, बहुत प्रयास करने लगा, दुखी होने लगा। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों नीचे गिरा? बाकी भी तिनके थे तो झाड़ पर, वो तो नहीं गिरे, मैं ही क्यों गिरा? बहुत संघर्ष किया, बहुत प्रयास किया और आखिर में थक गया। दूसरा जो तिनका था वो बड़ा ही आनंद पूर्वक अपनी लगन मगन बह रहा था, और फिर थोड़े समय के बाद जब नदी का प्रवाह थोड़ा कम हुआ और कहीं पर घास भी दिख रहे थे किनारे पर, तो फिर ये जो तिनका था पहला, वो उस दूसरे तिनके से कहता है कि मित्र अब प्रयास करते हैं, अब थोड़ी गति मंथर गति है, स्लो है, अभी अभी हम अगर प्रयास करें तो थोड़े भी प्रयास से हम बाहर निकल सकते हैं। पहला दूसरा तिनका तो इतना थक चुका था प्रयास करते करते, अब उसमें ताकत नहीं थी बाहर निकलने की। फिर भी पहला तिनका उसे उठाता है और घास के जो पत्ते होते हैं वहां लगे हुए, वहां पर उसको लेकर अपने साथ बाहर करता है। आराम करते हैं दोनों थोड़ी देर वहां पर, और फिर अपने दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं जहाँ की बहुत सुरक्षित रहते हैं। अब पहला तिनका इस बात से बहुत खुश रहता है अपने पुराने मित्रों की यादों में कि वो मित्र भी बहुत अच्छे थे, पर अब जो नए मित्र यहाँ मिले हैं ये भी बहुत अच्छे हैं। परंतु जो दूसरा तिनका है अब दुखी होने लगता है फिर से, उसे अपने पुराने मित्रों की याद आती है और दुखी होता है कि वो मित्रों से मैं क्यों बिछड़ गया, और यहाँ जो मित्र मिले ये उसको बिल्कुल अब पसंद नहीं है। कौन सा भाव है? समर्पण भाव कहाँ है? पहला जो है तिनका और दूसरा एक तिनका। पहले में वह अनन्य समर्पण भाव है, विपरीत परिस्थितियां थी फिर भी खुश था। वो जगह छूट गई, पहला स्थान छूट गया, पहला कमरा छूट गया, अभी नया कमरा मिला है, नए मित्र मिले हैं, उनके साथ भी खुश है, नई जगह है वहां भी खुश है, नए लोग आए, नए संस्कार है उनके, सारे विरोधी संस्कार हो सकते हैं परंतु उसे तो वो भी अच्छे लग रहे। दूसरे को ना तो तब खुश था शायद जब अपनी जगह था झाड़ पर, तब भी खुश नहीं होगा, जब गिरा तब भी खुश नहीं था, तब भी संघर्षरत था। नए स्थान पर जब पहुंचा, ये तो भाव ही नहीं है कि मैं बच गया, उसमें भी कंप्लेंट से भरा हुआ जीवन है। तो दूसरी विधि है माया जीत बनने की, आज के मुरली के वरदान से, सर्व संकल्पों सहित बाप पर बलिहार जो जाते, माया उनकी ओर वार भी नहीं कर सकती। तीसरी विधि अमृत वेले, दूसरी विधि विधि योग की विधि है। अमृत वेले स्वयं को सर्व शक्तियों से श्रृंगार करना है तो अचल अडोल रहोगे। अमृत वेले स्वयं को सर्व शक्तियों से श्रृंगार करना है, अर्थात इतना शक्तिशाली योग हो, इतना पावरफुल योग हो, ऐसा योग हो कि अनुभव हो जाए कि इस आत्मा में शक्ति भर गई। नहीं छूट सक रही थी किसी विकार से, किसी बंधन से, किसी संस्कार से, किसी कुप प्रभाव से, और अब महसूस हो रहा है कि शक्ति भरी है उसमें। अमृत वेला सर्व शक्तियों से स्वयं को, स्वयं का श्रृंगार करना। कुमार, सदा अपने को मायाजित कुमार समझते हो, माया से हार खाने वाले नहीं लेकिन सदा माया को हार खिलाने वाले, ऐसे शक्तिशाली बहादुर होना। जो बहादुर होता है उससे माया भी स्वयं घबराती है। बहादुर के आगे माया कभी हिम्मत नहीं रख सकती। जब किसी भी प्रकार की कमजोरी देखती है तब माया आती है। बहादुर अर्थात सदा माया जीत, माया आ नहीं सकती, ऐसे चैलेंज करने वाले होना। तो क्या बनना है? माया जीत, बहादुर, शक्तिशाली, हिम्मतवान, साहसी, चैलेंज करने वाले। और विधि क्या बताई आज? तीन विधियां। सबसे पहला अलौकिक जीवन, अलौकिक युग और परिस्थितियां क्या है? खिलौने। डरना नहीं, घबराना नहीं। दूसरी विधि समर्पण, अपने समर्पण को गहरा करना, अपने समर्पण को प्रगाढ़ करना, अपने समर्पण की गहराई को समझना। समर्पण संकल्पों से संबंधित है। समर्पण का संकल्प संबंध संकल्पों से है। अध्यात्म की सर्वोच्च अवस्था है समर्पण भाव, संपूर्ण समर्पण, हमारा कुछ भी नहीं। जो भी परिस्थितियां आ रही है उसको बड़े प्रेम से स्वीकार करना, प्रेम से, विरोधाभास से नहीं, दुखी मन से नहीं, उदास होकर नहीं, प्रेम से हर परिस्थिति को स्वीकार करना। क्योंकि अगर हो रहा है तो हमारा ही शायद उसमें कल्याण छिपा हुआ है, अगर ये आ रहा है तो ये हमारे ही किसी ना किसी कर्म का परिणाम सामने आ रहा है, भगवान इसमें उसका कोई संबंध नहीं है इसमें। ये हम परिपक्वता का साधन, वो असफलता के लिए कहा था, परंतु जो भी आ रहा है वह समर्पण भाव उसमें हो। रामायण में दिखाया है एक जगह, श्री राम अपना धनुष बाण जमीन पर गाड़ते हैं और सरयू नदी में उतरते हैं स्नान करने और बाहर आते हैं। वो जो धनुष होता है एक मेंढक के ऊपर घुसता है और खून निकलते रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं, जब वो वापस आते, वो मेंढक भी दिखाए बड़ा भक्त था, वहां तो कुछ भी हो सकता है ना भक्ति में तो वो कितना सत्य है और काल्पनिक है या वास्तव, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। भाव क्या है, सीखना क्या है, वो आवश्यक है। और वो जब आते हैं और कहते हैं अरे ये तो लहूलुहान हो गया है ये मेंढक और मेरे वजह से, और उसको कहता है कि तुमने बोला क्यों नहीं, तुम चिल्लाए क्यों नहीं, वो कहता है प्रभु मैं आपका ही भक्त हूं, आप ही तो बचाने वाले हो, और जब बचाने वाला ही प्रहार कर रहा है तो अब मैं किसके पास जाऊं इसका मतलब जो हो रहा है ये तेरी ही इच्छा से हो रहा है, अब तेरी ही इच्छा से तू जो जिसके आगे मैं संपूर्ण समर्पण हूं, क्या तुझे नहीं ये पता, क्या तू ये नहीं जानता, यदि तू जानता है मेरे साथ ये हो रहा है तो क्या मुझे चिल्लाने की कोई आवश्यकता है, क्या हमारे जीवन में जो हो रहा है वो बाबा नहीं जानते, जो उसके उसको बहुत सारे बड़े बड़े पत्र लिखो और वो दूसरी बात है, और उसको जोर जोर से चिल्लाओ गुहार लगाओ और उसको कहो कि तुम सुनते नहीं हो, तुम ये करते हो, तुम वैसे हो, क्या वो नहीं जानता। मेंढक कहता है कि जब मुझे पता है आप ही बचाने वाले हो और आपसे ही प्रहार हो रहा है तो मैं किसके सामने जाकर चिल्लाऊं, इसके लिए मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। ऐसा मन का दिव्य समर्पण भाव, जो भी परिस्थिति आ रही है, थाई विल शैल बी डन। जीसस क्राइस्ट से पूछते हैं क्या तुमने कितनों को बचाया, तुम स्वयं को नहीं बचा पाए, कितनों को तुमने बचाया, अंधों को बिनाई दी, आंख दी, रोगियों को रोग से मुक्त किया, मुर्दों को उठाया, खुद को नहीं बचा सके, परंतु वहां बचाने की बात नहीं थी। Thy will shall be done, तू जो चाहे, जैसी तेरी इच्छा। इसके लिए भक्त इतने पक्के होते हैं, और यहां पर ब्राह्मण थोड़े ढीले इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ ड्रामा है यहाँ वो वाली बात नहीं है, क्योंकि बाबा कहते मैं ना तो दुख देता हूँ ना तो सुख देता हूँ, परंतु वो होने के बाद भी हमारे मन में बाबा के प्रति वह समर्पण भाव चाहिए, क्योंकि ये समर्पण भाव हमारे समर्पण को शक्तिशाली, तीव्र करता है, प्रगाढ़ करता है, गहरा करता है, कि सब कुछ उस पर छोड़ देना, सब कुछ। भले वो कुछ नहीं कर रहा है, वो इस सुख दुख को नहीं दे रहा है संसार के, इससे उसका कोई संबंध नहीं है, वो कर्म फिलॉसफी में इंटरफियर करता नहीं है कभी भी भगवान, किसी के भी कर्म के हिसाब किताब में वो इंटरफियर नहीं करता है, परंतु ये विधि है उस कर्म हिसाब किताब से छूटने की, उसके प्रति वो भाव उत्पन्न किया जाए, बाकी उसको कोई लेना देना नहीं है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तो तसफल चाखा, कर्म प्रधान कर रखा है उसने, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तो तसफल चाखा, उसको तो अपने अपने कर्मों के हिसाब से फल मिलेगा हर एक को, हमने पाप कर्म बहुत किए तो मिलेगा फल, परंतु अब क्या दुखी होकर चुप तो करे, ये भी एक समर्पण भाव है कि जो आ रहा है उसकी ओर से आ रहा है और स्वीकार है, स्वीकार है। बाबा जिसको अपने शब्द में कहते जी हुजूर, जी हाजिर, जो भी तू कह रहा है, तुम दिन को यदि रात कहो तो रात कहेंगे, ऐसा हमारा समर्पण भाव है। और तीसरा अमृत वेले, और एक शब्द है जो हम भूल गए, साक्षी होकर, साक्षी होकर स्वयं को शक्तियों से भरना, तो माया जीत बनेंगे। ओम शांति। आज किसका सबसे पहले होमवर्क, आ जाओ आप, आ जाओ, अगला संडे यानी फ्राइडे और सैटरडे का तो दे दिया है हमने दो बहनों को, पूर्णिमा बहन सैटरडे को जो लास्ट मुरली है 1970 की वो अमृत वेले के ऊपर, और दूसरी डॉक्टर मेधा है वो एक दूसरी मुरली सुनाएंगे, ये दो हो गया, और कमेंट्रीज का तो हो गया, संडे का बाकी है। संडे